ओम शांति, ओम शांति। बाबा के चैतन्य बगिया के विशेष रूहे गुलाम, दादियों और दीदियों के बहुत करीब हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई जी हमारे बीच हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनको नमन करते हैं। 1986 में आपने ज्ञान प्राप्त किया, 1995 से आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में सीनियर सलाहकार कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिसिन के रूप में सेवाएं देना प्रारंभ किया। आप ट्रॉमा सेंटर में इंचार्ज हैं, हेल्दी हार्ट एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल कई अवार्ड आपने प्राप्त किए हैं। आप बाबा के विशेष रतन हैं जिन्होंने मेडिसिन अनेक मेडिकल साइंस दोनों को मिलाकर बहुत चमत्कारी प्रोजेक्ट लाया है। हजारों हार्ट पेशेंटों को ओपन हार्ट सर्जरी से बचा लिया। कई बार वर्ष में कैड का कैंप भाई जी लगाते हैं और उनको बाबा का संदेश भी मिलता है और खास डाइट चार्ट भी भाई जी देते हैं, उनको लाइफ स्टाइल सिखाते हैं कि कैसे आपको जीवन में चलना चाहिए। तो बाबा के घर से एक नया जीवन प्रदान करते हैं। भाई जी सदा ही हर्षित मुख रहते हैं, निरंकारी हैं और अपनी सेवाएं बहुत प्यार से सबके बीच देते हैं। तो भाई जी के लिए चार लाइन कहना चाहूंगी। अपनी हिम्मत पे उड़ान के काबिल हैं हम, अपनी हिम्मत पे उड़ान के काबिल हैं हम, मौसमों की हवा के सहारे नहीं, रुख हवाओं के मोड़ हैं हमने, रुख हवाओं के मोड़े हैं हमने सदा, हम परिंदे हवाओं से कभी हारे नहीं हैं, हम कभी परिंदे हवाओं से हारे नहीं हैं। हैं तो आप डॉक्टर लेकिन रूहानी डॉक्टर भी हैं, तो आज हमारे बीच हमको सिखाएंगे देवताई संस्कार बनाने का पुरुषार्थ। कैसे बने आदरणीय भाई जी?
ओम शांति। इस सुहावने पुरुषोत्तम संगम युग के भी लगभग 87 वर्ष बीत चुके, 88वां स्थापना दिवस दिवाली के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। दिवाली को ही हम अधिकतर यज्ञ का स्थापना दिवस समझते हैं सभी। इसमें बाबा ने, शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें पालना दी 69 तक, 33 वर्ष सभी आत्माओं को। उसके बाद शिव बाबा ने अवैध बाप दादा के रूप में हम बच्चों की 48 साल पालना की 2017 तक, और उसके बाद दादियों के द्वारा बाबा पालना करते रहे, और फिर 2020 में कोविड आया और 2020 में हमारी सभी दिलों की, सारे ब्राह्मण परिवार की जान की कहते हैं ना, की माने चाबी है ना, हमारी आदरणीय श्रद्धेय दादी जानकी जी एडवांस पार्टी में चली गई, फिर कोविड, फिर और दोबारा आया 21 में, फिर आया जोर से, और फिर 21 में हमारी सभी ब्राह्मण परिवार के हृदय सम्राट हमारी दादी गुलजार जी, बाप दादा का रथ भी एडवांस पार्टी में गया। और 2021 तो ऐसे बीता, कोविड की महामारी सभी ने देखी, कैसे देखा कि नष्टो मोहा, बाबा ने प्रैक्टिकल हमको पाठ सिखाया नष्टो मोहा क्या होता है, जैसे पापा हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा रहे थे। देखा कोई किसी का नहीं, ये भी सभी ने देखा। फिर 2022 में आपने देखा लास्ट ईयर एक वॉर शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, और 2023 में अब एक ऐसी वॉर शुरू हुई जिसमें सारा विश्व दो धड़ों में बट गया, जैसे महाभारत होती है ना, सारे विश्व के दो हिस्से हो गए, है ना, कुछ एक तरफ चले गए कुछ एक तरफ चले गए। तो इस समय जैसे एग्जाम होता है ना, एग्जाम आ जाता है, सारा साल तो हम पढ़ते हैं, किंतु एग्जाम नजदीक आने पर क्या करते हैं हम लोग, जब परीक्षाएं एकदम पास आ जाती है, एक महीना रह जाता है या 15 दिन रह जाते, क्या करते हैं फिर हम जो एग्जाम में आने वाली बातें होती है उन पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, एकदम बेसिक बातें नहीं पढ़ते हैं, किंतु जो एडवांस में ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऐसी तैयारी करते हैं ताकि जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको हम सिलेक्टेड पढ़ाई करते हैं, सिलेक्टिव स्टडी कहते हैं वो करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण मनुष्य से ब्राह्मण तो बन गए, ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता भी बनके हमें क्या बनना है, देवता बनना है। तो वो देवताई संस्कार, जैसे अभी भी संडे की, लास्ट संडे की मुरली चली, याद है सभी को, हमारे जैसे चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर ब्राह्मण जीवन की स्थापना हुई, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ। जब बाबा से हमें सत्य की समझ मिली, अपने सत्य स्वरूप की समझ मिली, स्वस्वरूप की समझ मिली कि मैं कौन हूं, और बाप के सत्य स्वरूप की समझ मिली, और ड्रामा में कर्म ये चक्र जो है, इस चक्र की समझ मिली, और इस चक्र में मेरा क्या पार्ट है, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की हमें गहराई समझ में आई, इस सत्य की समझ जब अंदर से आई, ज्ञान अंदर उतरा, ज्ञान से हमारे अंदर ब्राह्मण जीवन की स्थापना हो गई, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हमारे अंदर हुई। योग से जो पिछले 63 जन्मों के पाप कर्म हमने किए थे, देह विमान के अंदर आके देह विमान से उत्पन्न 5 विकारों के वश, और 5 विकारों से जो हमारे 10 संस्कार बने, उन संस्कारों के वश जो हमने पाप कर्म हुए, उन पाप कर्मों को हमने याद के द्वारा, योग के द्वारा हम विक्रम विनाश करे। योग से हमें शक्तियां प्राप्त हुई और उससे हमने विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी तक भी कर रहे हैं और करते रहेंगे अंत तक, है ना। ऐसे ज्ञान भी अंत तक ही चलता रहेगा, पढ़ाई भी अंत तक चलती रहेगी, और फिर जब हमारे विक्रम विनाश होने शुरू होते हैं तो फिर तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा। तो फिर जब ये ज्ञान और योग के आधार पर हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती है, और कैसे दिव्यता जो बाबा ने मुरली चलाई, सत्यता पवित्रता और दिव्यता, सत्यता की क्या निशानी क्या है हमारे अंदर, निशानी है दिव्यता, हमारे चेहरे और चलन में दिव्यता, अर्थात दिव्य गुणों के आधार पे हमारा मन वचन कर्म, हमारा संकल्प चले, हमारे बोल हो, हमारे कर्म हो, हमारे संबंध संपर्क हो, हमारा व्यवहार हो। तो आज हम इसको समझेंगे कि कैसे हम अब अंत में ऐसा जीवन जो कहते हैं ना देवी देवता धर्म के जो 5 क्वालिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हम पहले सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम फरिश्ता बनते हैं, और फिर देवता बनते हैं, और जब देवताई स्थिति को प्राप्त होते हैं तो लास्ट में हमारी बीज रूप स्थिति आती है, और उस बीज रूप, जब हम बीज रूप स्थिति हमारी अंत में आती है, और जब बीज रूप स्थिति में हम आ जाते हैं तो बीज रूप बाप के साथ ही बन करके हम बाप के साथ, जैसे आज के मुरली में भी था, मच्छरों से दृश्य नहीं, और आत्माएं मच्छरों से दृश्य भले पीछे पीछे आएंगी, किंतु हम बाप के साथ ही बन करके, बीज रूप बन करके, बीज रूप स्थिति को प्राप्त करके, बीज रूप बाप के साथ साथ ही बन करके वाया सूक्ष्म वतन परम धाम घर में जाएंगे, और फिर वापस ब्रह्मा बाबा के साथ वापस सुख धाम में आएंगे स्पेशल पार्ट बजाने के लिए। अब हमें ये जो पुरुषार्थ है, अब हम कैसे करें, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब इसमें हमारा इस तरह से पुरुषार्थ हो कि हमारे बेसिक ज्ञान योग भी हमारे और कंफर्म पक्के हो जाए, सॉलिड हो जाए और हमारी धारणा भी अच्छी हो जाए, क्योंकि ज्ञान योग धारणा, धारणा होने के बाद ही रियल में सेवा होती है, गुणों के द्वारा सेवा होती है। चेहरा माना मन, चेहरे पे कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा हमारा जो है हमारे मन का दर्पण है, हमारे मन में जो चलता है वो हमारा, इसलिए पहले क्या होना चाहिए, मन मना भव। तो मन मना भव जब हमारा होगा बाबा के, तो हमारे चेहरे से क्या दिखाई देगा, हमारे मस्तक से, हमारे नैनों से, जो कल बाबा ने बताया, कल की मुरली इतनी वंडरफुल मुरली थी, मस्तक, नैन, होठ, मुख है ना, दिल, हाथ, पैर है ना, तो बाबा ने कैसे बताया, तो उसके द्वारा फिर हमारा चेहरा चलन माना कर्म, कर्म माना हमारा देखना, इवन हमारा सोचना, हमारा निर्णय करना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, किसी से संबंध संपर्क में आना, व्यवहार में आना, ये है चलन। तो उसके द्वारा हमारे जब दैवी गुण प्रत्यक्ष होंगे तो हमारी रियल में सेवा होती है। उससे अब समय नहीं रहा सुनाने का, सुनने सुनाने का समय तो पूरा हो चुका है ना, अभी तो लोग सुनने का समय भी नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता है, हिम्मत की टांग भी नहीं है लोगों के पास, अब लोगों को प्रैक्टिकल सबूत देखना चाहते हैं, अब लोगों को हम कुछ सुनाते भी ना, कुछ सुनते हैं वो कहते हैं हमें प्रूफ दिखाओ, और प्रूफ हमें खुद बनना है, तो वो कैसे बनेंगे। तो आज इसी पे चिंतन करते हैं गहराई से, जो पहली बात है जो आज का वरदान था, बड़ा दिमाग वाले क्या करते हैं और सच्चे दिल वाले क्या करते हैं, तो जो सच्चे दिल साफ दिल वाले हैं, पहली पहली जो क्वालिफिकेशन है, अगर हमें सचमुच में सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण अधिकारी बनना है, या यूं कहें अगर हमें ज्ञान की सही ढंग से हम ज्ञान स्वरूप बन जाएं, हम याद स्वरूप बन जाएं, हम दिव्य गुण मूर्त बन जाएं, या कहें ज्ञान मूर्त बन जाएं, याद मूर्त बन जाएं और दिव्य गुण मूर्त बन जाएं और निरंतर सेवाधारी मूर्त बन जाएं, श्वासों श्वास जो हमने बाबा के बारे सुना है, ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना है हम सभी ने, कि ब्रह्मा बाबा कैसे चलते फिरते फरिश्ता रूप में शुरू से देखा लोगों ने, और हमेशा दाता रूप देखा, और मैं समझता हूँ कल की ही वाणी, जो कल का जो अपने ब्रजमोहन भाई जी ने जो क्लास कराई, हमारे वरिष्ठ दाता ब्रजमोहन जी ने जो क्लास कराई थी, कि हमारे कैसे ज्ञान और शक्तियों से, सत्युग में हम ज्ञान और शक्ति नहीं कहते, ज्ञान संपन्न नहीं कहते, ये शक्ति संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न नहीं कहते, वहां हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न कहते हैं। तो ज्ञान और शक्ति के आधार पर हमारे सर्वगुण आते हैं और सर्वगुणों के द्वारा सेवा होती है। अब जो है हमें देखना है कि हम कैसे करें। हमारे पास तीन चीजें हैं, बुद्धि है, आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां बुद्धि है, मन है और संस्कार है। तो आत्मा के पास सातों एनर्जी हो, भरपूर हो, आत्मा सदा फुल्ली चार्ज रहे, परमात्मा से निरंतर कंबाइंड रहे, और परमात्मा से निरंतर तभी हम कंबाइंड रह सकते हैं जब हमारे अंदर जरा भी देह भान का अंश ना हो, देह अभिमान का अंश ना हो, देह अभिमान के पदार्थों का अंश ना हो, देह अभिमान के संबंध संपर्क का अंश ना हो, और किसी विकार, किसी देह अभिमान के जो से पैदा होने वाले 5 विकार, उनका जो वंश है संस्कार के रूप में, आलस्य, अलबेलापन, दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, संशय, अनुमान लगाना, चिंता, भय, प्रेशर्स ऑफ लाइफ, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपटीशन, कंपैरिजन, और ईर्ष्या द्वेष जरा भी ना हो। क्योंकि जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं ना, श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण क्यों पड़ा, कृष्ण, कृष्ण माना ईर्ष्या, कंपटीशन कंपैरिजन से परे, जिसमें ईर्ष्या का कंपटीशन कंपैरिजन का अंश भी नहीं है, मोहन, जिसमें मोह का अंश भी नहीं है, तो वो हमें देवताई संस्कार अपने अंदर पैदा करने हैं, श्री कृष्ण जैसे बनना है। इवन ब्राह्मण शब्द में भी ये बात छुपी हुई है, ब्राह्मणा बेहद, बेहद की बुद्धि, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, जिनके अंदर जरा भी हद नहीं है, हद आजकल जैसे स्लोगन था, हद का जरा भी, हद माना देवभान, हद है, देवीमान हद है, देवीमान पैदा होता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, देवान भी आता है फिर चला जाता है, देवीमान से इसके संबंध संपर्क ये हद है फिर खत्म हो जाते हैं, देवीमान के पदार्थ आज हैं कल कम कम ज्यादा हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, और देवीमान से पैदा होने वाले पांच विकार और उनके बाल बच्चे, ये हद है सारी, अर्थात असत्य है। तो ब्राह्मण माना जिसके अंदर बेहद है, बेहद की बुद्धि माना जिसके अंदर बेहद, बेहद माना आत्मा बेहद है, जन्म मरण से परे है, अपरिवर्तनशील है, परमात्मा बेहद है, जन्म मरण से परे है, अपरिवर्तनशील है। दो क्वालिफिकेशन होती सत्य की, एक जन्म मरण से परे शाश्वत एटर्नल, और दूसरा अनचेंजेबल अपरिवर्तनशील। तो परमात्मा अपरिवर्तनशील है, तो ये जो है, और तीसरा जो है आत्मा परमात्मा का संबंध, वो भी बेहद है, सदा है। सत्युग त्रेता में बाबा हमारे संस्कारों में समाया रहता है सर्व संबंधों से, और त्रेता द्वापर कलयुग से तो बाबा हमारे साथ, हम उसको भक्ति में बहुत याद करते हैं, सभी धर्म वाले याद करते हैं। और फिर ड्रामा, ड्रामा में कर्म सत्य है, जो हमने कर्म कर दिया उसका विनाश, कर्म विनाश नहीं होता, हाँ कर्म का हिसाब तो देना ही पड़ता है सभी को, किताब विनाश हो जाता है, किताब माना पाप, कर्म सत्य है उसका विनाश कभी नहीं होता है, किंतु जो उसका पाप है, किताब है, पाप भस्म हो जाता है। तो पाप का मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं, क्या कर्म क्या है, और जैसे मान लीजिए 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपया हिसाब लिया, उधार लिया, वापिस नहीं दे पाए, और 100 साल के बाद उसका ब्याज कितना हो जाता है, एक बार हमने हिसाब लगाया था 4,18,35,040 रुपया हो जाता है, ये उसका पाप है, उसका हिसाब ब्याज है। तो 10 रुपया तो वापस करना ही पड़ेगा, जो हमने कर्म कर दिया वो तो हमें भुगतना ही पड़ता है, वो किसी का माफ नहीं होता, किंतु ये जो ब्याज है, किताब है, वो हमें योग से माफ हो जाता है। अगर हम विधि पूर्वक और त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो हमारे वो पाप कर्म भस्म होते हैं, कर्म भस्म, पाप भस्म होता है, कर्म भस्म नहीं होता है। कर्म सत्य है, जो कर्म हमने कभी भी किया उसका फल हमें मिलेगा, कर्म भस्म नहीं होगा, पाप भस्म होगा। तो ये हमें बाबा ने सिखा दिया, इसलिए हम इस हमारे अब हर कर्म पे, संगम पर हमें अटेंशन रखना आया है, और धीरे धीरे वो अटेंशन बढ़ता जा रहा है। अब याद, अब हम देखते हैं, चलते हैं कि अगर सचमुच में हमें बाबा का सच्चा बच्चा बनना है, तो ब्राह्मण माना हो गया पहले, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि, और मां, मां मीन्स मनमना भव, ब्राह्मण है ना, मनमना भव, बेहद की बुद्धि से मन मना भव, जो बुद्धि में आया ना बाबा का समझ आ गई, सत्य की समझ, ABCD आ गया, अब उसको मन के हर विचार भावना में भर दो, उसमें वही ABCD हर विचार में, हर भावना में, आत्मा बाबा कनेक्शन माना संबंध और ड्रामा, हर मेरा सोच, मेरा हर संकल्प, हर भावना, हर वृत्ति, हर दृष्टि, हर कृति और हर स्मृति से भरपूर हो जाए, ये मन मना भव है, इसे कहते फरिश्ता। और मध्याजी भव का मतलब क्या है, वो जो है ना, जो ना, ना मीन्स विष का अणु भी नहीं, मतलब मध्याजी भव, मध्याजी का मतलब, मध्याजी के तीन अर्थ हैं, मध्याजी का अर्थ है, पहला मध्याजी का अर्थ है कि जो मध्य से हमारे अंदर आसुरी स्वभाव संस्कार आए हैं, रावण के स्वभाव संस्कार आए, उन पर विजय प्राप्त करना। दूसरा मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे, फरिश्ता, जहां मेल फीमेल का भान नहीं है, पुरुष स्त्री का भान नहीं है, फरिश्ता में कोई मेल फीमेल नहीं होता है। तीसरा है मध्याजी भव माना विष्णु, चतुर्भुज विष्णुमा, जिसमें विष का एक अणु भी ना हो, जिसकी बुद्धि में, मन में और संस्कार में किसी विकार का अंश भी ना हो, तो वो हमारी अल्टीमेट स्टेज है, देवता की स्टेज है। तो अब हम चलते हैं। तो दिल में मेरे, दिल जो मैं सबसे, आज बाबा ने सच्ची दिल की जो बात की ना, सच्ची दिल बना क्या, नॉर्मली मनुष्यों के दिल में क्या भरा रहता है, मनुष्य के बुद्धि मन और संस्कार तीनों में क्या भरा रहता है, उनमें तीनों में ही पांच व्यक्ति, देवान, देवीमान, देवीमान के संबंध संपर्क, देवीमान के पदार्थ और देवीमान से पैदा होने वाले पांच विकार, उनका उनके संस्कार भरे रहते हैं। किंतु हम ब्राह्मणों के दिल में बुद्धि का एक एस्पेक्ट है, दिल सबसे अंदर वाला एस्पेक्ट है दिल। हमारे दिल में क्या होना चाहिए, याद किसकी आती है, जो दिल में होता है। अगर मेरे दिल में बाबा है, सच्चे दिल माने जिस दिल में बाबा के अलावा दूसरा कोई नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई नहीं। सच्चे ब्राह्मण की निशानी है कि उसके दिल में एक बाबा के अलावा कुछ भी नहीं होता है, वो सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाता है, उसकी दिल सच्ची दिल है। और साफ दिल माना जिस दिल में बाबा की श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत, परमत, गुरुमत, शास्त्रमत, किसी भी चीज की, किसी और मत की अंश भी नहीं, साफ, एकदम साफ। तो मुरलीधर और मुरली, श्रीमत क्या है, मुरली। तो जिसकी दिल सच्ची और साफ है, उसकी, उसके जो नेक्स्ट जो पावर आती है, उसके बाद आठ शक्तियां आती हैं बुद्धि में। बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं, पहला है दिल, दूसरा है विवेक, तीसरा है निर्णय करने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, जिसको हम दिव्य बुद्धि भी कह देते हैं, और चौथा है चित्त। तो दिल सच्ची साफ हो तो हमारा विवेक, मन सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाती है। इस दुनिया में हजारों असत्य हैं, और सत्य भी मिट्टी में ढका हुआ है, पहचानना उसको भी मुश्किल है। तो जब बाबा साथ हमारे दिल में आ जाता है, तो हमारे सत्य को परख, हम सत्य को हजारों असत्य में से सत्य को परख सकते हैं। आप जहां भी रहते हैं, चाहे आप सेम सेंटर पर रहते हैं या घर परिवार में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, चारों तरफ असत्य का साम्राज्य है, रावण का साम्राज्य है, उसमें सत्य को परखना, ये परखने की शक्ति तभी आ सकती है जब मेरे दिल सच्ची साफ हो। जब दिल सच्ची साफ हो जाती तो सत्य को परखने की शक्ति आ जाती, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, जब सत्य को परखने की शक्ति आ जाती, सत्य को परख लेते, विवेक जागृत हो गया, मतलब तीसरी आंख खुल गई, थर्ड आई ऑफ विजडम भी बोलते हैं इसको, तीसरी आंख खुल गई, और तीसरी आंख जब खुल जाती तो फिर यथार्थ निर्णय कर लेते। दूसरी शक्ति कौन सी है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, और जब यथार्थ निर्णय कर लेते तो विस्तार को सार मिलाने की शक्ति आ जाती। देव और देह की दुनिया के विस्तार से अपनी मन बुद्धि को समेट करके हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये बुद्धि यहां है, आत्मा यहां है, बुद्धि इसके आसपास ही है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, एक्चुअली मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। और जो संस्कार बाबा ने हमें सिखाए, नियम मर्यादाएं सिखाई, ब्राह्मणों के मर्यादा कौन सी है, चार मर्यादाएं हैं, कौन कौन सी, पहली पवित्रता, जितनी अधिक गहराई से पवित्रता हमारे अंदर आती है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता आती है, खाली ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्माचारी भी, मुझे वैसी पवित्रता हमारे अंदर, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से परे, क्या क्यों कैसे से परे, जिसमें किसी विकार का अंश भी ना हो, जितनी गहराई से हमारे अंदर पवित्रता आती है, उतना अधिक हम बाबा से जुड़ने लगते हैं, उतना हम सत्य बाप से जुड़ते जाते हैं। दूसरी, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध माना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, सात्विक में सात गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, रास्तिक नहीं, पराठा पकौड़ा समोसा जिसमें आलस आए, तामसिक नहीं, अचार है, नॉनवेज की तो बात छोड़ो, लहसुन प्याज हम नहीं खाते, इवन अचार है, मसाले, बहुत गर्म मसाले खाना, बहुत चाय कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सब उत्तेजना पैदा करते हैं शरीर के अंदर, वो नहीं। और फिर शुद्ध सात्विक भोजन, खाली ये तो शुरुआत की बात है, फिर आंखों का भोजन भी क्या है, कान का भोजन क्या है, नाक का भोजन क्या है, इससे भी हम ऐसा कुछ देखे नहीं, ऐसा कुछ पढ़े नहीं, ऐसा कुछ सुने नहीं, ऐसे वायुमंडल में न जाए जहां पर ऐसी वृत्ति हो। जितना अधिक ये पवित्रता आती जाएगी, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्धता बढ़ती जाएगी, उतना अधिक हम बाबा के नजदीक जाते जाते हैं। ये मर्यादा है, ये हमारी चार मर्यादाएं। सत्संग, सत्य का संग, माना एक बाबा और मुरली का संग, और इसके अलावा एक बाबा के अलावा कोई संग नहीं, और मुरली के अलावा कुछ तीसरा संग नहीं। टेलीविजन, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ये देखूं वो देखूं, चैटिंग, चैट क्या होता है वो, ट्विटर होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, फेसबुक, उन सब में नहीं जाने का, उससे बच के रहने का। और फिर दैवी गुणों की धारणा, इस आधार पे पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन और सत्संग के आधार पे दैवी गुणों की धारणा शुरू होती है। ये चार हमारी मर्यादाएं हैं। और फिर नियम हमारे इसी आधार पे, फिर हमारे चार नियम बनते हैं, जिसके अंदर चार धारणाएं, चार ये मर्यादाएं हैं, वही पावरफुल अमृत वेला कर सकता है। वही मुरली को बाबा की गोद में बैठ के एकदम बाबा से, बाबा की याद में मुरली, आज की मुरली जैसे थी, बाबा की याद में बैठ के, बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन बैठ के मुरली सुनता है। सुनाने वाला कोई भी हो, किंतु बहन हो या भाई हो, किंतु बाबा की याद में बैठ के मुरली सुनता है। और फिर सारा दिन अटेंशन, माना बाबा ने जो मुरली सुनाई उसका सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहे। और सोते समय फिर वेंटिलेशन, माना सच्चा सच्चा पोता मेल, सुबह से लेके बाबा ने जो होमवर्क हमें दिया, मुरली माना होमवर्क, जो हमें आज्ञा दी, मुरली में चार बातें होती हैं, आज्ञा है, मुरली श्रीमत है, उसमें आज्ञा होती है, शिक्षा होती है, बाप के रूप में आज्ञा होती है, टीचर के रूप में शिक्षा और सावधानियां होती हैं, और सतगुरु के में फरमान होते हैं। तो वो हम चारों चार बकायदा सारा दिन उसको बकायदा देखें, रात को बाबा की मुरली दोबारा पढ़ लें और देखें मैंने कितना फॉलो किया, कहां मेरी गलती हुई, सच्चा सच्चा समाचार बाबा को दें। ये चार हमारे नियम है ब्राह्मणों के। तो ये चार नियम हम प्रॉपरली फॉलो, पर होते कैसे हैं? जैसे ही हमें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही ब्रह्मा माँ के रूप में, दिव्य बाबा, शिव बाबा ही माँ है एक्चुअली, पर ब्रह्मा के द्वारा माँ की पालना देते हैं और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, हमको दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, दो गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट है हमारी माँ के रूप में। तो दिव्य दृष्टि का अर्थात हम अपने स्थूल देह को ना देखें, अपनी स्थूल देह किसी के स्थूल देह को ना देखें, उसमें चमकती मणि को देखें, सत्य को, ये सत्य स्वरूप है ना, ये इसको, इस ये दिव्य दिव्य दृष्टि माना दिव्य स्वरूप को देखें। तो जितना जितना, और फिर इसका दूसरा, फिर ब्राह्मण, दिव्य ब्राह्मण स्वरूप माना बेहद की बुद्धि, मां जिसकी बुद्धि में सिर्फ बाबा के अलावा, दिल में जिसे बाबा के अलावा और मुरली के अलावा कुछ और नहीं, बाबा से एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी। तो अपना दिव्य ब्राह्मण स्वरूप देखें। तो जितना जितना दिव्य दृष्टि से हम देखना शुरू करते हैं, और तीसरा लेवल है दिव्य दृष्टि का, वो है हमारा सत्य स्वरूप, परमधाम वाला सत्य स्वरूप और सत्य वाला सत्य सत्य स्वरूप। परमधाम में हमारा कौन सा स्वरूप है? अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, बाबा के साथ चमकता हुआ सितारा, सबसे अलग, जैसे बाबा है वंडरफुल स्टार, ऐसे ही हम भी उसके समान, बिल्कुल नजदीक समीप, उसके सातों गुणों से भरपूर सत्व प्रधान परफेक्ट स्थिति है हमारी, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अधिकारी, उस स्वरूप में अपने आप को इमर्ज करें। तो ये जो है पहला सत्य स्वरूप, इसे कहते हैं हमारा, ये जो है हमारा, इसको दिव्य दृष्टि से अपने आप को देखना, और सामने वाले को भी, चाहे आप लौकिक में हो अलौकिक में हो, उनका भी वही दिव्य दृष्टि से उस स्वरूप को इमर्ज करो, उनका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप देखो, आदि देवी देवता। जितना इसको हम इमर्ज करते जाते हैं और व्यवहार करते हैं इस स्वरूप में रह करके, उतना अधिक हमारी दिव्य बुद्धि की आप शक्तिशाली बनती जाती है। दिव्य बुद्धि एक रॉकेट बन जाती है, दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट बन जाती है, और लिफ्ट एक सेकेंड से भी कम समय में मुझे आत्मा को, और साथ साथ बाबा दिव्य बुद्धि एक्टिव होती है, और साथ साथ बाबा ये दिव्य बुद्धि एक्टिव रहे, इसके लिए मुझे, जैसे माँ बच्चे को सिखाती है ना बाप की गोदी में देने से पहले, कि हमारे कुल के नियम मर्यादाएं क्या है, जो अभी मैंने चार नियम और चार मर्यादाएं आपसे शेयर की, आप सब जानते हैं, ये माँ ही हमको सिखाती है, शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हमको चार मर्यादाएं और चार नियम सिखाती है। तो माँ हमें इस तरह से पालना देती है, और ये पालना हमको इस लोक में मिलती है। जिस इस पालना पे जब हम चलने लगते हैं, तो हम बाप दादा की ये दिव्य बुद्धि जो मां जो माँ के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट हमें बर्थडे गिफ्ट मिली है, एक ये एक्टिव हो जाती है और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक सेकंड से भी कम समय में मुझ आत्मा को सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र बुद्धि, पवित्र मन सारे शरीर में फैला, पवित्र संस्कार। संस्कार कौन से वाले? ये चार नियम, चार मर्यादाएं और चार नियम, ये हमारी सूक्ष्म शरीर की ड्रेस बन जाती है। बुद्धि यहां है, मन सारे शरीर में फैला है और संस्कार हमारी ड्रेस बन जाती है सूक्ष्म शरीर की। और इस सूक्ष्म शरीर के साथ, लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ, ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझ आत्मा को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सार रूपी गोद में पहुंचा देती है। अब वहां पर जाकर के हम क्या करते हैं? बाप दादा की गोद में बाबा से फिर वर्षा मिलता है। मां से क्या मिला? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि मिली गिफ्ट के रूप में, और नियम मर्यादा की समझ मिली, और जब दिव्य बुद्धि एक्टिव हो गई हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच गए लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ। बाप दादा माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का लाइट का सूक्ष्म शरीर, चमकती हुई चमकीली ड्रेस के साथ। बाबा क्या है? ब्रह्मा बाबा दिव्य बुद्धि ब्रह्मा बाबा की, और मन बाबा का 100% लाइट का बना हुआ मन, लाइट माना पॉजिटिव सातों एनर्जी से भरा हुआ मन, हर संकल्प भावना वृत्ति और स्मृति में बाबा सातों चित्त जो सागर साथ में है ना, तो सातों चमकीली ड्रेस माना चार नियम चार मर्यादा में ब्रह्मा बाबा परफेक्ट बन गए, तभी बाबा ऊपर गए। सबसे चमकीली ड्रेस ब्रह्मा बाबा, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फरिश्तों का बादशाह कहते हैं। तो उनकी गोद में फिर जाकर के बाबा कौन है, बाप कौन है, वर्षा क्या है बाबा का, संगम का वर्षा कौन सा है? संगम का वर्षा है ज्ञान, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य और निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और आठों शक्तियां। संगम का ये प्रत्यक्ष फल है। इस आधार पर जितना भी कमाई अभी करते हैं उस आधार पर सत्युग का हमें वर्षा मिलता है। तो हम सत्युग हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बाप के रूप में बाबा हमको क्या करता है, इस सागर में समा जाए और महसूस करें उसको। हम विजुलाइज करने की बात भी नहीं है, रियलाइज करने की, रिवाइज करें ये बात को कि बाबा कैसे बाप के रूप में, शिव बाबा बाप के रूप में मुझे कैसे उस सागर में वर्षा है। ये बाबा का वर्षा, बाप के रूप में वर्षा क्या है? तीसरा नेत्र मेरा खुल गया नीचे, तीसरा नेत्र थर्ड आई मुझे खुली और उसके आधार पर मैं बाबा त्रिकाल दृष्टि बना और बाबा की गोद में पहुंच गया, और बाबा की गोद में मैं ज्ञान के सागर में समा जाऊं बाप के रूप में, ABCD के सागर, उसको बकायदा महसूस करो अंदर से, कैसे मैं आत्मा, परमात्मा कैसे, मेरा संबंध क्या, ड्रामा क्या, मुझे कोई बीमारी है, तन में रोग है, मन में रोग है, घर में प्रॉब्लम है, सेंटर में प्रॉब्लम है, कुछ भी संसार में चल रहा है, ये ड्रामा में मेरे अपने कर्मों का फल है। जिसने जैसे कर्म किया उसका वैसा फल उनको मिल रहा है। इसलिए पास को फुल स्टॉप लगा के और अपने सत्य में टिक करके उस परम सत्य बाप से कंबाइंड। तो पवित्रता का सागर, शांति का सागर, उस शांति को महसूस करें। शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट। पास को फुल स्टॉप लगाना, सत्य में टिके परम सत्य बाप से कंबाइंड होके घर कर्म करना। प्रेम माना सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम माना इस विषय में जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में घर में या बाहर वर्किंग प्लेस पर है, उन सबको उनके हर रोल के साथ बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान से स्वीकार करना, उनके बराबर पालना करना। इसलिए भगवान को प्यार का सागर कहता है। भगवान सबको, सब आत्माओं को, कैसे भी हो, आतंकवादी भी हो, चोर डाकू भी हो, उसको भी दिल से सम्मान से बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है, उनके बराबर पालना करता है। इसलिए कैसी भी आत्मा भगवान के पास कुछ करने से पहले जाती है, उनसे उनको लगता है कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहा है। हमें भी ऐसा प्यार चाहिए, ऐसे प्यार हमारे सबके प्रति चाहिए। तो उस प्यार के सागर को महसूस करें और फिर अतीन्द्रिय सुख का सागर। अतीन्द्रिय सुख माना पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। बाबा की गोद में हूं, बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, सातों चैतन्य आत्मा को जो सागर में मैं समाया हुआ हूं उसको महसूस करें। सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति है, संतुष्टता इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति है, आनंद उसके बाद आनंद, अतीन्द्रिय सुख के बाद आनंद का सागर। आनंद माना कोई इच्छा नहीं, एकदम लवलीन स्थिति। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा के साथ लवलीन स्थिति में हूं, ऐसी स्थिति में चले जाएं। और फिर सातों चैतन्य आठों शक्तियां अतीन्द्रिय सुख आनंद से ये आठ शक्तियां पैदा होती, सत्य को परखनी शक्ति। अब सत्य को परख लिया, मैं बाबा की सत्य परम सत्य बाबा की गोद में हूं, उस परम सत्य को महसूस करें, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति बाबा तो है ही, परम यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। मैं देव और देवी के विस्तार से बाबा के सार रूपी गोद में समाया हुआ, समेटने की शक्ति, यहां से भी मन बुद्धि को समेट लो, उस सूक्ष्म शरीर को भी समेट लो और अशरीर आत्मा बन के परम धाम में अशरीर भाव से कंबाइन हो जाओ, बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है, करंट आने लगती है और फिर सहन करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे जब हम परमात्मा से उस अशरीर स्थिति में बाबा से कंबाइंड होते हैं तो उसको सूक्ष्म शरीर में यहां पर मन बुद्धि संस्कार है, किंतु साथ में मेरा स्थूल शरीर नीचे है, भले मैं मन बुद्धि से वहां हूं, आत्मा तो शरीर में यही है, तो मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आती है, ऐसे केमिकल पैदा होते हैं, एंडोर्फिन्स एनकैफेलिन्स पैदा होते हैं और इतना आभामंडल बड़ा हो जाता है कि हमें जो भी हमारे तन में या मन में या बाहर परिस्थितियां आती हैं वो हमारे लिए सूली से कांटा बन जाती है, दर्द फील होना ही बंद हो जाता है। जो मैं बड़ी दादी में देखता था, बड़ी दादी जब हॉस्पिटल में थे, वेंटिलेटर पे थे, हालांकि दादी को तकलीफ होती थी, फिर दादी अत्यंत सुख में रहती थी, मुस्कुरा रही होती थी, मैं साथ में दादी के साथ बैठा होता था, मैं दादी को हाथ लगा के पूछता था, दादी कहाँ पर हो, दादी कहती इशारे से बताती, बोल तो नहीं सकती थी, बाबा के पास। तो उसमें भी अतिंद्रिय सुख, जरा भी दर्द, दादी ने कंप्लेन नहीं करती, दादी मुझे तकलीफ हो रही है, ट्यूब गले में पड़ी है, नहीं फील नहीं होगा, अतिंद्रिय सुख आनंद लवली स्थिति और फिर सत्य को प्रकट, ये आठों शक्ति है, सत्य को प्रकट शक्ति, यथार्थ निर्णय करने शक्ति, विस्तार को सार में लाने शक्ति, ये विस्तार है, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद सार है, और वहां से भी समेटने की शक्ति, वहां से भी मन बुद्धि को समेट अशरीर आत्मा बन के परम धाम में अशरीर बाप से कंबाइंड होने की शक्ति, फिर उसके आधार पर सहन करने की शक्ति और सहन करके फिर समाने की शक्ति, इतनी शक्ति आ जाती है कि दुनिया में सहन तो सभी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, जो ज्ञान में नहीं है वो भी करते हैं, किंतु बाबा के बच्चे भी सहन करते हैं, तो जब बाबा से कंबाइंड हो जाते हो तो समानिक शक्ति आ गई, मैंने आपको अब महसूस भी नहीं होता कि मैं कुछ किसको कहूं, इसे कहते हैं सहनशीलता, सहन करके भी ठंडे रहते हैं और फिर हम सामना करने की शक्ति, और भी प्रॉब्लम आए तो भले उसको सामना करने को तैयार। मैं बड़ी दादी को देखता था, दादी को कभी हम ना यहां से वो डालते ना ब्लड डालते ना, जो लाइन लेते ना वेन लेने के लिए ना फ्लूड चढ़ाना होता है, तो दादी को यहां लगाया नर्स ने, फिर यहां लगाया, नहीं लगी क्योंकि स्वेलिंग थी, फिर दादी अपने आप ही दूसरा हाथ कर देती थी, लो इस पे भी लगा दो, नहीं तो क्या करेंगे, दो बार तीन बार चेक किया तो क्या चौथा बार कहेंगे नहीं मेरे को नहीं लगाना। तो सामना करने की शक्ति में ना प्रैक्टिकल सामना करने की शक्ति क्या होती है, और सहयोग करने की शक्ति, फिर उन्हीं आत्मा को सहयोग भी करना, दादी मुस्कुरा के उसको देख भी रही नर्स को, है ना, ये नहीं कि उसको इरिटेट हो रही, नहीं इरिटेट नहीं हो रही, सहयोग करने की शक्ति, जो हमें तंग कर रहा है उसको सहयोग करने की शक्ति। तो आठों शक्तियां जब हमारे अंदर आने लगती है ना, आठ शक्तियां आती है ना, तो इस तरह से ये बाप के रूप में वर्षा, ये वर्षा मिलता है। जब आठों शक्तियां, सातों एनर्जी का बैलेंस होने लगता है, माना ज्ञान पवित्रता, खाली ज्ञान नहीं पवित्रता भी बराबर, शांति भी बराबर, माना वर्तमान में रहते हैं, प्यार सबको जो भी जैसा भी कुछ करे, चाहे महिमा करने वाला हो, गाली देने वाला हो, ग्लानी करने वाला हो, उसको भी बराबर प्यार, जैसे दादी का था, और दादियों मैंने देखा, बड़ी दादियों में देखा, गुलजार दादी जी को देखा, किसी को भी देखा, जिनको भी हमने बहुत दादियों से पालना ली, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, सभी दादियां, कैसा उनका व्यवहार था, निर्मल शांता दादी कैसा उनका व्यवहार था, जानकी दादी जी थे, गुलजार दादी थे, तो अभी अभी हम रत्नमणि दादी को देखते हैं, एकदम शांत मूर्त, एक ही दादी है हमारे पास, है ना, शांत एकदम मुस्कुराती रहती है हमेशा, भले खांसी हो, निमोनिया हो जाए, बुखार हो जाए, हम दादी कहते दादी कैसे हो, दादी कहेगी या तो अभी तो बिल्कुल कम बोलती है, पहले थोड़ा बोलती थी, मैं तो टोटल ठीक हूं, दादी तो टोटल ठीक है, सांस नहीं आ रहा है, बुखार 102 हो रखा है, दादी कह रही मैं टोटल ठीक हूं, मतलब उनकी अंदर की स्थिति क्या है, खाली ज्ञान नहीं है, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और आठों शक्तियों का स्वरूप है, सातों एनर्जी का बैलेंस है, और हीलिंग एनर्जी है। दूसरे वाला डॉक्टर भी हील हो जाता है पास में जाके बैठे, नर्स भी जाके हील हो जाती है, उनको भी लगता है मेरी हीलिंग हो रही है अंदर से, मतलब ऐसी स्थिति में है वो कर्मातीत, उनके विकार विनाश हो रहे हैं। क्योंकि देवता बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा, विक्रम तो विनाश करने पड़ेंगे ना, इसी को याद कहते हैं ना, याद के तरह शक्तियां आती है ना हमारे अंदर। तो ये हमारा संबंध बाप से, संबंध टीचर के द्वारा क्या, फिर जब ये बाप से जब सातो एनर्जी आ जाती है ना अंदर, उसका अनुभव हो जाता है। अब बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन में ही है, अब बाबा टीचर के रूप में क्या त्रिकालदर्शी बना रहा है, माना सुदर्शन को घूमना शुरू हो जाता है, सुदर्शन अपना अनाथ, हम बाबा के पास सूक्ष्म वतन में अनादि ज्योति बिंदु परम धाम चले जाओ, देखो बाबा के साथ आदि देवी देवता स्वरूप सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा उस स्वरूप को देखो, और फिर मध्य पूज्य स्वरूप अखंड दानी अखंड महादानी। देवता रूप में हम क्या है, मध्य हमारे देवी देवता मंदिर में कैसे होते, अखंड दानी, जो भी आत्मा आती है अपना देवान भूल जाती है, देवीमान भूल जाती है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट हो, भूल जाए देवीमान को भूल जाता है, अखंड दानी स्थिति होती है। ज्ञान का दान हमेशा होता रहता है उनका, अखंड महादानी गुणों का दान हमेशा मूर्ति से होता रहता है, अखंड वरदानी शक्तियों का दान आता रहता है हमेशा। ये हमारा मध्य पूज्य स्वरूप है, और संगम में ब्राह्मण स्वरूप बाबा की गोद में, बाबा सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में बैठे, बाबा में मुरली सिखा रहा है, मुरली सुना रहा है, दस्ता रचना के आदि मंदन का ज्ञान समझा रहा है, और फिर फरिश्ता स्वरूप बाबा की गोद में बैठ के चक्कर घुमाते हैं, बहुत सुंदर योग लगता है बाबा की गोद में, करके देखना आपने। फिर जो है उसके बाद सतगुरु वाला रूप है ना, सतगुरु कौन सा रूप है, सतगुरु मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान हमको देता है। मुक्ति जीवन मुक्ति मतलब क्या, साकारी अकारी निराकारी की ड्रिल, त्रिलोकी नाथ, आप बाबा की गोद में हो परम धाम में चले जाओ, वापिस सूक्ष्म वतन में आ जाओ, वापिस साकार में आ जाओ, फिर सूक्ष्म वतन में चले जाओ, फिर परम धाम चले जाओ, ये ड्रिल करते जाओ। अब फिर बंधु के रूप में बड़ा भाई, बड़ा भाई क्या करता है, बड़ा भाई क्या करता है, बड़ा भाई बड़ी बहन क्या करती है, छोटा भाई है छोटी बहन है क्या करते हैं, उसका बस्ता हो ना भारी तो बड़ा भाई पकड़ लेता है, बड़ी बहन पकड़ लेती है, तो वो कहते मुझे दे दो। तो बाबा बंधु के रूप में क्या करता है, हमारा सारा लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी बाबा को दे दो, हल्के हो जाओ। और फिर सखा का रूप, छठा स्वरूप सखा का रूप है, पहले माता फिर पिता फिर शिक्षक फिर सतगुरु फिर बंधु फिर सखा। सखा का रूप कैसा है, उसमें अपना मन बिल्कुल खाली कर दो, हम माता पिता को नहीं बताते हैं कुछ बातें, टीचर को भी नहीं बताते हैं, सतगुरु को भी नहीं बताते हैं, बंधु को भाई बहन को भी नहीं बताते हैं, किंतु सखा को सब कुछ बता देते हैं। तो ये छह संबंध करने के बाद फिर साजन का स्वरूप आता है, क्योंकि अगर मुझे सचमुच में बाबा से सर्वगुण संपन्न बना, कौन बनाएगा सर्वगुण संपन्न हमको, क्योंकि बाबा से मुझे करंट कब आएगी, मैं बाबा से निरंतर कंबाइंड रहूं, सताने वाली याद हो, कौन किसकी होती सताने वाली याद, सताने वाली याद होती आशिक माशुक की, साजन सजनी की, कि तो साजन सजनी का संबंध कब महसूस कर सकते हो, जब ये छह संबंध से पालना ली हो, इस छह संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बने हो, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा, सखा से बिल्कुल डबल लाइट हो गए हो, बिल्कुल क्लीन हो गए हो, तब सजनी तैयार होती साजन से मिलने के लिए, तब तक सजनी तैयार नहीं होती साजन से मिलने के लिए। और साजन का काम है सजाना, गुणों से सजाना, ड्रेस से, टाइटल रूपी ड्रेस और सर्व गुणों के गहने, तो सोमान, तब वो सोमान आता है अंदर से, सोमान माना टाइटल कि मैं ये हूं, वो सोमान जागृत होता है, और तब वो ड्रेस, ड्रेस माना अब 36 गुणों की ड्रेस, हम बाबा से निरंतर कंबाइन, ऐसा नशा रहने लगता है साजन सजने का। आपने देखा लौकिक में भी देखा होगा, जब किसी को थोड़ा सा प्यार किसी से हो जाता है, अपने माँ भी भूल जाता है, माँ भी भूल जाती है, बाप भी भूल जाता है, टीचर भी भूल जाता है, सतगुरु भी भूल जाता है, और क्या होता है, भाई बहन भी भूल जाते हैं, दोस्त भी भूल जाते हैं, है नहीं भूलते, और उसके साथ भाग जाते हैं, उसके साथ ही रहने लगते हैं, सब कुछ वही है हमारा। तो ये जब संबंध आता है ना साजन का, ये साजन का संबंध बहुत वंडरफुल संबंध है, तो फिर देवी गुणों की धारणा होने लगती है,
ये निरंतरता चाहिए, निरंतर बिना निरंतर याद के, निरंतर याद के अशरीरी बन के अशरीरी बाप से कंबाइंड रहना या सूक्ष्म वतन बाप दादा गोद में रहना निरंतर, तभी दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। उसके बगैर दिव्य गुणों की धारणा नहीं हो सकती। उसी स्थिति में हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं, और जैसे जैसे विक्रम विनाश होते हैं दिव्य गुणों की धारणा आती जाती है। तो पहली पहली धारणा सत्यता की आती है। सत्यता की परिभाषा आपने सुनी, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर के हर संकल्प बोध और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, व्यवहार में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल व कर्म से टच भी ना करना, ये सत्यता। पवित्रता, अपना और उसका स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करना। निर्भयता, बुद्धि रूपी आंख परमधाम में लगी रहे और मन रूपी आंख अपने लक्ष्य पे सत्य में लग सुखधाम में लगी रहे। सभ्यता, चार नियम और चार मर्यादाएं ब्राह्मणों की कल्चर है। पहले 14 गुण जो है ना 36 गुणों में से ये हमारे विशेष हैं, क्योंकि ये 36 गुण जो है कभी हमें सत्युग में नहीं चाहिए। सत्युग में चाहिए क्या? ये ब्राह्मणों के गुण है, अभी हमको यूज करने। 16 कला संपूर्ण कहां बनना है? सर्वगुण संपन्न कहां बनना है? देवताओं को बनना है क्या? पुरुषार्थ हमें यहां करना है, वहां तो प्रलब्ध है। तो ऐसे 36 गुण, तो मैंने सिर्फ नाम सुना दिया, टाइम पूरा होने वाला है। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता। जब सभ्यता आ जाती है, चार नियम चार मर्यादा, तो अंतर्मुखता आती है। फिर हम बाबा से कम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा की याद में टिक करके, और फिर हम सोचते हैं, निर्णय करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, संबंध संपर्क व्यवहार में आते हैं। ये है अंतर्मुखता। और जब ऐसा अंदर का सुख मिलने लगता है ना, तो बेहद की वैराग्य वृद्धि आती है। ना वैर रहता, ना किसी से राग रहता। वैराग्य में ना वैर ना राग, बेहद का सारे विश्व में। और जब बेहद की वैराग्य वृत्ति है, तो अनासक्त, अनासक्त ना खाने की इच्छा है, कुछ मैं स्पेशल खा लूं, कुछ स्पेशल देख लूं, कुछ स्पेशल सुन लूं, इच्छा खत्म हो जाए, अनासक्त वृत्ति जिसे कहते हैं। और जब इस दुनिया से अनासक्त होते हैं, तो उपराम वृत्ति जाती है। उपराम है ना, तब मन बुद्धि ऊपर जाने लगती है। और उपराम वृत्ति आती तो एकांतवासी, तब एकांतवासी एक के अंत में खोने लगते हैं, ज्ञान सागर के अंत में, पवित्रता के सागर के अंत में एकांत अच्छा लगने लगता है। तब एकाग्रता आती है, मतलब बुद्धि में एक ही अग्र रहने लगता है, एक ही बाबा का अग्र रहने लगता है। तब एक नाम ही आते हैं, मुझे तकलीफ हार्ट की हो गई, मुझे कोई डॉक्टर याद नहीं आता है, चल दो मिनट बाबा को याद। Thank you.
ओम शांति। 10 मिनट में और हम इस बाकी गुण पूरे करेंगे, बाकी फिर 20 मिनट योग करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कौन से गुण की, एकांत, एक नामी, एकाग्रता के वेग एक नामी आती है। एक नामी माना कुछ भी हो मुझे एक के अलावा दूसरे की याद ना आए, चाहे तन में प्रॉब्लम हो, मन में प्रॉब्लम हो, कोई समस्या आ जाए, बाबा याद आए और बाबा से पूछें, बाबा फिर कहे कि बच्चे ऐसे कर लो, फला डॉक्टर से इलाज करा लो, फला कुछ कर लो। बाबा यज्ञ में ये नियम रहा है, जब भी हमारी कोई दादी बीमार होती थी, कुछ भी होता था यज्ञ में, कुछ परिवर्तन होता था, कुछ भी बात होती, बाबा से मैसेज मंगाते थे, बाबा क्या करें। ब्रह्मा बाबा ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया, छोटी छोटी बात में संदेश के ऊपर भेजा, फागी में फंस गए, बाबा से पूछ के आओ क्या करें, फिर बाबा ने रास्ते बताया कैसे जाना है। छोटी हर बात के लिए बाबा ने संदेश प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक नामी वही है, एक मेरा, वो जो बताए मैं मुझे करना है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी मैं ये करूं, नहीं बाबा जैसे, बाबा की राय से चलना है। एक नामी, जब एक नामी आती तो व्यर्थ से इकोनॉमी आती, फिर एकमत होते और फिर एक रस। ये 14 गुण पहले ब्राह्मणों के विशेष गुण है, जिसके आधार पर बाकी हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं, ये हमारे बेसिक फाउंडेशन गुण है 14 गुण, तब हमारे अंदर सरलता आने लगती है। 14 गुण जब आ गए ना ये वाले, तो सरलता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन जो देवताई जीवन बहुत सरल जीवन होता है, जो ऑफिशियल होता है वो देवता का देवताई संस्कार नहीं है। संस्कार में ये आदतें हमको बनानी है, ये नए संस्कार में आदत बनानी है इनमें रहने की, सत्यता में रहने की, पवित्रता में रहने की, निर्भयता में रहने, बुद्धि वहीं लगी रहे, मन वहां लगा रहे, सभ्यता, चार नियम चार मर्यादा हमारी आदत बन जाए, अंतर्मुखता हमारी आदत बन जाए, बेहद की वैराग्य वृत्ति आदत बन जाए, अनासक्त कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिंपल रोटी सब्जी खाई, पानी पिया, चटनी बहुत है, जितना जरूरी है उतना, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। उपराम एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, जो ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल एग्जाम, दादियों को हमने देखा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मुझे दादी का याद आता है, दादी जानकी जी का, दादी 7 बजे रोज आती थी क्लास में, और 6:30 बजे से कभी जाए ना, 6:30 दादी की तबीयत ठीक नहीं होती थी, 6:30-7 बजे तक भी, और दादी फिर एकदम से ऐसे करके 7 बजने का टाइम आया, दादी ने कहा कि मुझे अभी जाना है, और फिर एकदम बस बाबा की याद से, एक नामी से, वो अपने आप को ठीक करके और क्लास में पहुंच जाती, फिर आधा घंटा योग कराती, फिर उसके बाद आधा घंटा क्लास भी कराती, उसके पहले लगता सांस भी ढंग से नहीं आ रहा है। तो एक नामी से दादी ऐसे अपने आप को तैयार कर लेती थी, कोई कुछ कहता नहीं, दादी ने आज राम कर लो, नहीं वैद्य से इकोनॉमी, कोई नहीं मुझे जाना है क्लास में जाना है। एक मत, एक रस स्थिति, प्रैक्टिकल स्थिति, प्रैक्टिकल क्या होता है दादियों में भी देखा है। तो फिर सरलता आती, फिर सरलता आती है, दिखावा नहीं। देखो दादी जब हंसती थी ना, जानकी दादी बच्चों की तरह, छोटे बच्चे होते ना ऐसे हंसती थी, जब मुस्कुराएगी हंसेगी, मुस्कुरा लास्ट में देखा होगा, बहनों ने देखा होगा, पुराने भाई बहन ने देखा होगा, सरलता बच्चों की तरह से, छोटा बच्चे नहीं होते थे, इनोसेंट जैसे, इनोसेंट मुस्कुराहट, सरलता, नम्रता तब आती है। बड़ी दादी बड़ों बड़ों के आगे, इतने बड़े जो आते हैं ना, छोटे कोई सबके आगे हाथ जोड़ के, मैं आपकी छोटी बहन हूं, ये हंस संत महात्मा आते थे, तो उस नम्रता, दया, रहम, ये देवताओं का मुख्य सब गुण है, दया, रहम, करुणा, करुणामय मूर्ति दिखाते हैं ना, क्षमा भाव, उदारता, दूसरे गलती को समा लेना, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, ये एक के पीछे एक आते हैं, ऐसे सीक्वेंस है, गंभीरता, फिर शीतलता, गंभीरता के मतलब सीरियस होकर के हम काम, जो काम करेंगे सीरियस होकर करेंगे, लगन से करेंगे, शीतलता, ठंडक, शीतलता आने के बाद सहनशीलता आती है, सहन करके संभाल लेना, फिर दृढ़ता आती है, दृढ़ता आने के बाद संतुष्टता आती है, संतुष्टता आने के बाद हर्षित मुक्ता आती है, जब हर्षित मुक्ता आती है तो क्या आता है, फिर आता है सम्मान देकर सबको सम्मान देना, संतुष्ट आत्मा ही सबको सम्मान दे सकती है, अगर मेरे में खुद संतुष्टि, मैं क्या दूसरों को सम्मान कैसे दूंगी, संतुष्ट आत्मा सम्मान देकर सबको सम्मान दे सकती है, तब सम्मान देने की आदत पड़े, सम्मान देकर सम्मान देने की, तब निमित्त भाव आता है, तब निर्माण माना निरहंकारी बनते हैं, तब निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव बनते हैं, निर्माण भावना पैदा होती है, तब निर्मल स्वभाव, कोई मैल नहीं है स्वभाव में, तब निर्मल वाणी निकलती है मुख से, और फिर चार आखिरी गुण जो है ना, वो पूरे
सत्ययुग त्रेता द्वापर युग की मर्यादा है, सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलयुग की, अंत तक उसकी निशानी रहती है आज्ञाकारी। अभी हम बाबा के आज्ञाकारी माना सदा पवित्र निरंतर योगी भाव, दो आज्ञा है बाबा की उसमें 100% अभी बनते हैं और वफादार, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वो वफादारी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत तक भी चलती है वफादारी, कि मेरा तो जो इसके साथ काम करते हैं उसके साथ वफादारी, उन्होंने जो आज्ञा दी उस पर चलना, माता पिता की आज्ञा पर चलना। सत्युग त्रेता में तो है, द्वापर कलयुग में भी इसका अंश दिखाई देता है। ईमानदारी, जो बात जैसी वैसी बताना, बाबा को हम ये पोता में रोज देते हैं ना सच्चाई से, जैसी बात हो वैसी बताते हैं रोज, तो वो ईमानदारी हमारी सत्युग त्रेता द्वापर युग कलयुग की हमारे नियम मर्यादा बनाती है, उसी के आधार पर समाज चलता है। और फिर फरमान बरदारी, जो ऑर्डर मिला आज मुरली में मिला, वो ऑर्डर आज का जैसे वरदान था, आज का अव्यक्त इशारा था, ये हमारे ऑर्डर है, फरमान है, उस पर चलना। तो 36 गुण जब हम ये हमारे साजन के रूप में हमारे अंदर सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, जितना उसके साथ का अनुभव करते हैं। और जब एक बात और यहां, जैसे ही हम साजन बनते हैं, साजन के साथ रहने लगते हैं, देवी गुण आने लगते हैं, तो सेवा होने लगती है। जैसे लौकिक में बच्चे पैदा होने लगते हैं, यहां भी बच्चे पैदा होने लगते हैं, बच्चे माना परिवार बड़ा होने लगता है, लोग हमारे संबंध संपर्क में आते हैं ना, लोग सिर्फ देख करके संबंध संपर्क में आते हैं, देखते हैं आपसे हमें ऐसी वासना आती है, हमें आपसे हमें ऐसी वासना आती है, आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो, आप कैसे शांत रहते हो इतने देर, आपके रहते पेशेंस कैसे है, आप सदा मुस्कुराते कैसे, आप कुछ मांगते नहीं हो, संतुष्ट रहते हो, तो उनको देख करके उनमें प्रेरणा पैदा होती है, तो बदलने लगते हैं। अब परिवार बड़ा होने लगा, सेंटर में कैसे परिवार बढ़ता है, जो निमित्त बहन होती है उसके ही ये स्वभाव, ये जो 36 गुण वाला संपन्न स्वभाव, सर्वगुण संपन्न स्वभाव से ही सेंटर की प्रोग्रेस होती है। निमित्त बहन, निमित्त जो बहन भाई बहन होते हैं उनकी, उनसे ही बनता है, परिवार बड़ा होने लगता है। अब सर्जन, अब उसके बाद पर्सनल फिजिशियन चाहिए, साधन मिला ना, अब पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर चाहिए, सर्जन चाहिए, कौन सा संबंध, आठवां संबंध है सर्जन का। सर्जन क्या करता है, रिटर्न जर्नी है, पापकर्म बहुत किए हुए हैं, जा रहे हैं, लोग मिलते हैं, कुछ ना कुछ हमसे गलतियां भी होती हैं रास्ते में, गिरना और संभलना थोड़ा थोड़ा होता है, कभी ऊपर नीचे होता है, मर्यादा भी कभी कहीं थोड़ा टेंशन कम हो जाती, तो सर्जरी, सर्जरी माना बाबा हमारे उन पाप कर्मों को, जैसे 36 गुण जो आए ना, अभी उसमें संपूर्णता नहीं आई है, कोई हमारा 50% बना है, कोई 70% है, कोई 30% है, मधुरता हमारी 70% है, सहनशीलता हमारी 50% रह गई, 16 कला माना हर गुण में 100%। तो रिटर्न जर्नी में जितना हम इस अटेंशन में रखकर के पुरुषार्थ करते जाते, पुरुषार्थ करते जाते, तरसर जन्म पाप कर्म पूरे होते होते हम 16 कला संपूर्ण माना हर गुण में 100% हो जाते, हर गुण कला के माफिक हो जाता, हर गुण कला के माफिक माना कोई कितना भी कुछ मुझे कहे मेरे मुंह से कड़वा शब्द निकलेगा, ये मधुरता, जैसे दादी जी का था एग्जाम्पल, सत्यता के एग्जाम्पल, कोई कुछ भी हो जाए कितनी मुसीबत आ जाए सत्यता कभी भी मुख से झूठ निकलेगा नहीं। पवित्रता के एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा जैसे थे, दादियां थी, ये सारे गुणों के एग्जाम्पल हमारे दादियां और हमारे ब्रह्मा बाबा रहे, मम्मा रही, हमको भी ऐसा बनना है, 16 कला संपूर्ण यही बनना है। और ये रिटर्न जर्नी में सर्जन को साथ साथ रखो, हर बात में राय लो, हर बात में इलाज कराओ, रोज ऑपरेशन कराओ, रोज अपना बाबा से अमृत वेले कराओ, घंटे घंटे में ऑपरेशन कराओ, सुबह शाम खाली नहीं, घंटे घंटे में ऑपरेशन कराओ, तुरंत गलती हुई तुरंत बाबा से राय लो, बाबा क्या करें, बाबा खुद ही साथ रखो, पर्सनल फिजिशियन साथ ही रहता है, बुलाना नहीं पड़ता है ना, साथ ही रखो उसको, चिप यहां पे लगा के रखो, है ना, तो ऑपरेशन करता रहेगा, तो हम 16 कला संपूर्ण बन जाए। संपूर्ण निर्विकारी माना देहभान देहभिमान का अंश भी नहीं रहता है, 10 बच्चे ना आलस्य भी खत्म, अलबेलापन भी खत्म, किसी का दोष देखने दिखाई देने बंद हो गए, सबके गुण दिखाई देने शुरू हो गए, बदलाने की भावना खत्म, रहमदिल बन गए, निश्चय विश्वास आ गया, शक अनुमान खत्म हो गया, चिंता की वजह निश्चिंत हो गए, और भय की वजह निर्भय बन गए, जल्दीबाजी की वजह पेशेंस धीरेता आ गई, और ईर्ष्या द्वेष की वजह विश्व कल्याणकारी बन गए। तो पूरा संपूर्ण निर्विकारी, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, नियम मर्यादा जो थी ना हमारी 100% नियम मर्यादा हो गई, मर्यादा पुरुषोत्तम, चार नियम चार मर्यादा में। और अब जब जैसा हो जाते ना, तो तन मन धन और संबंध से हमारा पूरा मोह निकल जाता है इस करते करते। पूरा मोह खत्म। जब ऐसा मोह निकल जाता अब बाबा हमारा, हम बाबा पे बलिहार चढ़ जाते, तन मन धन संबंध से रियल बलिहार, जो ब्रह्मा बाबा पहले दिन चला गया। इसलिए ब्रह्मा बाबा फरिश्ता पहले दिन से दिखाई दिया, पहले दिन से ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता के रूप में सबने देखा, क्योंकि बाबा ने पहले दिन ये सब काम करके दिया, तन मन धन और संबंध चारों समर्पण कर दिए। तो जब ऐसी स्थिति बनी तो बाबा ने समर्पण किया और फिर बाबा क्या बन गया, बाबा ने अपना तन मन धन सब बाबा को दे दिया, तो बलिहार चला गया, तो बाबा उसका बच्चा बन गया। तो ऐसा तब बाबा हमारा बच्चा बनता है, अर्थात हमारा वारिस बनता है। और जब बाबा को हम अपना बच्चा बना लेते हैं, रियल में बच्चा, कहने को बच्चा नहीं कि मेरे तीन बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे नहीं, रियल में बाबा, बाबा बड़ा बच्चा है, बाकी दो छोटे बच्चे नहीं, रियल में बाबा, हर चीज में बाबा, तब बाबा के हम रियल बच्चे बनते हैं। और जब हम रियल में बाबा के बच्चे बनते हैं तो अहिंसा परमो धर्म बनते हैं। जैसे बच्चे के अंदर पता ही नहीं होता काम क्या होता है, कोई विकार का अंश ही नहीं होता, महात्मा कहते ना बच्चे को, तब अहिंसा परमो धर्म, माना काम और कामनाओं से परे, वो है लाइट का ताजा जाता है, क्रोध लोमो अहंकार का अंश भी खत्म हो जाता है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजा जाता है। तब जैसे बाबा के सपूत बच्चे बन जाते तो सारा समय हमारे द्वारा सारे विश्व की हर आत्मा की सेवा होती रहती। तो ये संस्कार डालना है, ये देवताई संस्कार हमको अपने अंदर, ये आदत डालनी है हर समय। एक एक संबंध की बाबा के, 9 मुख्य संबंध बाबा के हैं, एक एक संबंध में हम हमेशा खोए रहें, समाए रहें, उसको महसूस करते रहें, उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाएं, प्रैक्टिकल में उसको यूज करें, तो हम ये देवताई संस्कार बनाने का यही पुरुषार्थ निरंतर करते रहें, तो फिर तो बाबा और हम बाबा के साथ, बाबा हमारे साथ, और हम फिर बाबा के साथ ही बन करके, बीज रूप बन करके बाबा के साथ वापस घर जाएंगे, और फिर सत्युग में बाबा के साथ, रॉयल फैमिली में बाबा के साथ। ओम शक्ति। चलिए सभी 15 मिनट बाबा को बहुत पावरफुल याद में बैठेंगे, है ना। अभी सभी उड़ जाओ ना, यहां से उड़ जाना नहीं, उड़ जाओ, उठना नहीं है, उड़ जाओ, उड़ जाओ ना, दे और दे की दुनिया से मन बुद्धि को समेट करके एकदम सूक्ष्म वतन में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादे गोद में पहुंच जाओ। एक एक संबंध को, पहले मां के संबंध को महसूस करना, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, नियम मर्यादाएं, फिर बाप के संबंध से वर्षा, टीचर के संबंध से सुदर्शन चक्र, सतगुरु के संबंध से ड्रिल, बंधु के संबंध से सारे बोझ बाबा को देके हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ, और सखा के संबंध से अपनी सब बातें बाबा को सुना दो, जो गलतियां हुई हो सूक्ष्म जाने अनजाने, और फिर साजन से 36 गुणों का अनुभव करो, सर्जन से अपना ऑपरेशन करा के 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, और फिर बाबा को सब कुछ बलिहार चले जाओ, तो अहिंसा परमो धर्म बन जाओ। चलिए बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में बाप दादा गोद में पहुंच जाओ।
हर पल तेरी ओर।
तुझसे